हेलो एंड वेलकम, यू आर लिसनिंग FM डाउनटाउन और ये है हमारा इंटरव्यू शो मिस्टर टॉकी टॉक्स और आप सुन रहे हैं मुझे यानी अमन सिंह को। एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी ज़रूरत हमें हमेशा महसूस होती है, बट हमारे वो 2-3 घंटे की फ़्लाइट के पीछे कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता है। हमारी फ़्लाइट में मौजूद वो एक शख्स जिसके हाथ में हमारी पूरी जर्नी होती है, जी हाँ, हमारे पायलट्स। पायलट्स की लाइफ कई बार हमसे बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड रह जाती है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। आज मिस्टर टॉकी टॉक शो में हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही खास गेस्ट कैप्टन प्रिया जैन। कैप्टन प्रिया एयर इंडिया में पायलट हैं और सिर्फ पायलट ही नहीं, एक बहुत अच्छी ऑथर भी। कैप्टन प्रिया की लिखी हुई बुक व्हील्स अप बेस्ट बुक है एविएशन लवर्स के लिए। इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपसे कैप्टन प्रिया जैन से, बस एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। तोहफे तो सिर्फ तोहफे होते हैं, लेकिन उनके पीछे की जो भावना होती है वो बहुत स्पेशल होती है। क्या आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी को बर्थडे पे या वेडिंग पे क्या गिफ्ट दें? वेल, इसका सोल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कस्टोविश, कस्टोविश के इंस्टाग्राम स्टोर पर आपको मिलेंगे ढेरों गिफ्टिंग के ऑप्शंस, जैसे कस्टमाइजेबल वॉलेट्स, क्लॉक्स, स्पीकर्स, गिफ्ट, फोटो फ्रेम्स, टी शर्ट्स, कॉफी मग, फोन कवर्स, बॉटल्स, डिजिटल कार्ड्स और भी बहुत कुछ। तो अभी कस्टोविश के इंस्टाग्राम पेज पर जाएं और अपना मनपसंद प्रोडक्ट ऑर्डर करें। कस्टोविश का इंस्टाग्राम हैंडल है कस्टोविश, CUSTOWISH, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9693749696 पर DM करें। आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं यदि आप कोड यूज करते हैं FMDT10। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें कस्टोविश के साथ। कस्टोविश, ऑल योर इमेजिनेशंस अंडर वन रूफ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। कैप्टन प्रिया मैम, वेरी वेरी वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू सो मच अमन फॉर अ लवली लवली इंट्रोडक्शन।
तो कैसी हैं मैम आप?
मैं एकदम अच्छी हूँ, आप बताइए, आपका पेंडेमिक में सब कैसा चल रहा है घर पर?
एकदम बढ़िया मैम, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। तो मैम, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से। तो कैसी रही आपकी पायलट की जर्नी?
पायलट की जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रही
जी।
मतलब मैंने बचपन से ही पायलट बनना चाहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि बड़े होके एकदम से मेरा ख्वाब हो गया पायलट बनने का। जब फर्स्ट टाइम मैंने फ्लाई किया था, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मैं 3 साल की थी सिर्फ, एंड काठमांडू फ्लाई किया था मैंने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से। एंड फिर हम हर गर्मियों की छुट्टी में जाते थे कहीं ना कहीं घूमने, पेरेंट्स लेके जाते थे थ्रू फ्लाइट, तो उससे मेरा एविएशन की तरफ क्यूरोसिटी और बढ़ती चली गई बचपन से। तो जब मैं 10वीं में आई तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे बनना तो पायलट ही है, बट उस टाइम उन्होंने मेरे को इतना सीरियसली लिया नहीं। एंड मैं शादी से पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, जहाँ पे मतलब 11 फैमिली मेम्बर्स थे, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा एंड मेरे भाई बहन सारे मिला के, एंड कोई भी नहीं मान रहा था क्योंकि इतना मेल डोमिनेटिंग फील्ड है ये, एंड सबको लग रहा था कि आपकी फैमिली में लाइक कोई भी पायलट नहीं है, आपको गाइड कौन करेगा? एंड आप पहली लड़की हो हमारे घर की, लाइक आई एम द एल्डर मोस्ट, तो मेरे से पहले और कोई नहीं गया इस फील्ड में। तो सबके अपने अपने डर थे, बट फाइनली जब मैंने जिद करी कि नहीं बनना तो मुझे पायलट ही है, मैं और कुछ नहीं करना चाहूंगी, एंड मुझे भूख हड़ताल भी करनी पड़ी थी उनको बताने के लिए कि कोई मेरा मतलब ऐसा जिद नहीं है एंड मैं सीरियस हूँ इस चीज के लिए। फाइनली फिर
बनना तो पायलट ही है,
बनना तो पायलट ही है। फिर दादी ने मुझसे मेरी पूछा कि अगर भाई तुम मर गए उड़ाते उड़ाते जहाज, तो मतलब लोगों के दिमाग में ये भी काफी डर होता है कि फ्लाइंग तो बहुत रिस्की जॉब है, बट मैं बता दूं मतलब सबके लिए कि फ्लाइंग इज द मोस्ट सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने ही क्रैशेज होते हैं साल में, बट रोड एक्सीडेंट्स कितने होते हैं
बहुत ज्यादा।
तो वो ये लोगों के मन में अलग अलग काफ़ी सारे एविएशन को लेके मिथ्स हैं। एंड बस मैंने अपने दादी को इतना ही बोला कि अगर मेरा मन ना ऐसे ही लिखा होगा तो ऐसे ही सही, उसको तो आप नहीं रोक सकते। बट मैं हर दिन तो नहीं मर सकती, मतलब सोच सोच के कि यार आपने मुझे बनने ही नहीं दिया जो मैं बनना
नहीं
चाहती
दिया।
थी। तो फाइनली फिर उनको लगा कि नहीं, मैं काफ़ी सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके, एंड वो मान गए। मतलब मेरे को फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए भेज दिया उस
सच अ
टाइम।
वंडरफुल जर्नी मैम।
हाँ जी, तो वहाँ से मेरी ये जर्नी एविएशन की स्टार्ट हुई। एंड 2009 में मेरे को लाइसेंस मिल गया।
ओ
2009 में फिर किंगफिशर बंद हो गई थी एयरलाइंस, जिसकी वजह से काफ़ी रिसेशन आया था मार्केट में। एंड फिर कोई जॉब नहीं थी, 5-6 साल तक के लिए कोई जॉब नहीं थी नए पायलट्स के लिए। एंड वो मेरा
ओके
काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड रहा। एंड उस टाइम मुझे ऐसा भी लगा कि मैंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, तो मे बी यू नो गॉड मेरे को पनिश कर रहा है। एंड सब मुझे बोलते भी थे, देखो आपको मना ही किया था हमने। तो उस टाइम मतलब फैमिली वैसे बहुत सपोर्टिव थी, और बीच बीच में वो भी इम्पेशेंट हो जाते थे कि कब तक लगेगी जॉब, इतना खर्चा हो गया, कब तक आप घर पे बैठोगे। तो उस टाइम पे मैं अपना ब्लॉग्स वगैरह लिखती थी, मतलब पोइट्री लिखना मैंने और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। पहले भी लिखती थी मैं स्कूल टाइम में, बट इतना नहीं। तो उस पीरियड में मैंने अपना राइटिंग स्किल कल्टीवेट किया बहुत ज़्यादा। देन अपने फादर के साथ मैंने काम किया उनके बिजनेस में उस टाइम तक। देन इंडिगो में मैंने ग्राउंड स्टाफ की नौकरी करी,
यस
जहाँ
मैम।
हाँ जी, जहाँ से मुझे ग्राउंड रियलिटीज पता लगी कि एक फ्लाइट के पीछे मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं फ्रॉम द वेरी ग्राउंड लेवल। तो वहाँ पे काम किया। फिर उसी साल ही, मतलब 1 साल काम करना था मुझे, जिसके थ्रू इंडिगो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपके पास लाइसेंस है एंड आप ग्राउंड स्टाफ की नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको कंपनी चांस देती है, इंटरनल वैकेंसीज निकालती है पायलट्स के लिए। एंड उसमें
ओके
क्या है,
मतलब आपके
परफॉर्म।
पास
हाँ जी,
पायलट लाइसेंस होने के बाद भी आप एक ग्राउंड स्टाफ रही, उसके बाद आप एक पायलट बनी।
हाँ जी, हाँ जी,
ओके
क्योंकि और कोई रास्ता उस टाइम मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैंने फिर यही चूज किया। मैंने घर पे मतलब अपने से छोटे लोगों को, छोटे बोले तो जो एकदम नए नए लोग हैं जिन्होंने एविएशन ज्वाइन किया, उनको फ्री क्लासेस भी दिया लाइसेंस गेन करने के लिए।
ओके
वो सब काम भी किया बीच में। बट हाँ, फाइनली जो फर्स्ट मेरी किसी एयरलाइंस में जॉब थी वो एज अ ग्राउंड स्टाफ थी इंडिगो में। तो वहाँ पे मैंने करीबन 8 या 9 महीने काम किया था। एंड एयर इंडिया की उसी टाइम फिर वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया। एंड लकीली 7 साल बाद लाइसेंस मिलने के मुझे नौकरी मिली। तो
ओके
मतलब ये था मेरा सफ़र अभी तक का एयरलाइंस में।
मतलब पायलट लाइसेंस मिलने के 7 साल बाद जाकर के आप एक पायलट बनी।
हाँ जी, हाँ जी,
सो मैम, पायलट जैसे कि जॉब है वो हमें बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, तो उसके बीच में आपको इतनी अच्छी बुक लिखने का, आपने लिखी बुक, तो मैम इसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली?
बुक लिखना हमेशा से मेरा एक सपना रहा था। मतलब मैंने 11th क्लास में जब मैं थी, जब से मैंने लिखना स्टार्ट किया था, वो भी काफ़ी एक्सीडेंटल था। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं पोइट्री भी लिख सकती हूँ कभी। एक्चुअली मेरी इंग्लिश टीचर ने कुछ रैगिंग पे लिखने के लिए हम लोगों को होम असाइनमेंट दिया था, एंड मैंने एक्सीडेंटली मतलब पोइट्री लिख दिया, मुझे भी नहीं पता वो मैंने कैसे लिखा। एंड जब मैंने लिखा, टीचर को पढ़ाया, तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने फिर मेरे को टॉपिक्स देने स्टार्ट करे कि आपके अंदर यू नो इनेट एक पैदाइशी, मतलब आपके अंदर है ये हुनर लिखने का, पोइट्री। मतलब कविता हर कोई नहीं लिख सकता,
नहीं लिख
बट
सकता।
आपके अंदर है वो, तो आप इसको कल्टीवेट करो। एंड वो मेरे को
यस
टॉपिक्स
मैम।
देती थी, फिर मैं लिखती थी। देन मेरे फादर ने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे हमेशा से लिखने के लिए। वो भी लिखते थे, बट वो अपने लिए लिखते थे, लाइक पर्सनल डायरी लिखते थे वो अपने टाइम पे, अब नहीं लिखते। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अरे आपको लिखना चाहिए जब भी थॉट आए। फिर मैंने डायरीज वगैरह लिखना स्टार्ट किया, ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किया। तो मोटिवेशन मेरे को अपने सबसे पहले स्कूल टीचर से मिली, देन अपने फादर से मिली, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। एंड जब मैं फिर एयरलाइंस मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने देखा कि लोगों को काफ़ी कुछ नहीं पता है एविएशन के बारे में। लाइक मेरे
यस मैम।
रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, उनको लगा कि अब भाई ये पायलट बन गई है तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो मुझसे काफ़ी सारी क्वेरीज पूछने लग गए रिलेटेड टू पायलट की लाइफस्टाइल, एयरक्राफ्ट के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में, एंड जो डिलेज वगैरह होते हैं, फ्लाइट डिलेज, ये टर्बुलेंस है, वेदर है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछने लग गए वो लोगों से। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ब्लॉग लिखूँ उसके ऊपर, एंड अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस जो भी इंटरेस्टिंग वाले होते हैं वो लोगों के बीच में शेयर करूँ। तो मैंने
ग्रेट
ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया, उस पर मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड देन आई वॉज लाइक कि इसी ब्लॉग को ही क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाए एक किताब में। फिर मैंने अपना किताब लिखना स्टार्ट किया, एंड वो भी लिखती मैं मतलब बहुत ही मज़ेदार तरीके से थी, क्योंकि उस टाइम मैं फ्लाइंग कर रही थी तो टाइम मिलता नहीं था इतना। तो मैं रहती हूँ नोएडा में, एंड एयरपोर्ट मेरे घर से दूर है, मतलब 1.5-2 घंटे लगते थे पहुँचने में, जिस भी दिन फ्लाइट लगती थी मेरी। तो मैं उस सफ़र में लिखती थी, मतलब क्लू पॉइंट्स लिख लेती थी, एक्सपैंड नहीं करती थी
ओके
उसे। एंड जब भी मेरी कोई लेओवर फ्लाइट होती थी, जहाँ पे मेरे को नाइट स्टे मिलता था होटल्स में, फिर इतने अच्छे व्यू के साथ, सबके साथ, वहाँ जाके मैं फिर अपने चैप्टर्स वन बाय वन मैंने कंप्लीट करे। फाइनली जब मैं फिर अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से पहले आई हैव कंसीव्ड, सो आई वॉज ऑन मेटर्निटी लीव। तो मेटर्निटी लीव में थी, फ्लाइंग व्लाइंग बंद हो गई थी, घर पे बैठी हुई थी मैं, लॉकडाउन भी लग गया था। तो मैंने सोचा इस टाइम को क्यों ना अपनी बुक को पूरा कंप्लीट करने में यूटिलाइज किया जाए।
यूटिलाइज किया जाए.
हाँ जी, तो मैं अपनी बुक एक दो बार तो लिख चुकी थी, फिर तीसरी बार जब मैंने उसको पढ़ा तब भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा वो, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगा। देन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा और मसालेदार बनाया जाए, थोड़े करेक्टर्स इसके अंदर डाले जाए, थोड़ा फिक्शनल बनाया जाए, तो क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन बहुत है उस किताब में, बट अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहेगी और कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं होगी तो रीडर्स को इतना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में।
मजा नहीं आएगा. यस
तो
मैम.
मैंने उसके पीछे एक पूरा कहानी बनाया जिससे इन्फॉर्मेशन भी उनको मिल जाए एंड पढ़ने में एक मज़ा भी आए, इंटरेस्ट भी बना रहे। तो मैंने तीसरी बार वो लिखी एंड फाइनली जाके मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला पढ़ के कि हाँ अब ये छपने लायक है बुक। एंड फाइनली मैंने अमेजोन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के थ्रू उसको ई बुक पब्लिश किया अपना ऑन अमेजोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड अभी मैंने पेपर बैक भी अपना प्रिंट करवा लिया है, लाइक पब्लिश करवा लिया है, एंड बहुत ही जल्द मैं अनाउंस करूँगी थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कि वो अमेजोन पे कब अवेलेबल होगा। तो दिस इज़ माई जर्नी ऑफ व्हील्स अप।
सो मेरे लिसनर्स, अगर आप मैम की बुक यानी कि व्हील्स अप को खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइडेड है. आप उस लिंक को फॉलो करें. अभी इसका ई बुक वर्ज़न अवेलेबल है जैसा कि मैम ने बताया. और यदि आप पेपरबैक वर्ज़न भी लेना चाहते हैं तो आप मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है. तो आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी. और यदि आप मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप एविएशन इंडस्ट्री की बहुत चीज़ों को मिस कर रहे हैं. इट्स माई गारंटी टू यू. सो डोंट वेस्ट योर टाइम. जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड फॉलो द लिंक एंड फॉलो द कैप्टन प्रिया जैन ऑन इंस्टाग्राम. तो अब आगे बढ़ेंगे मैम. आपसे जानना चाहेंगे, हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इसके ऊपर कि अगर हम पायलट बनना चाहते हैं तो अगर एक बात करें क्लास 10th के बच्चे की, जो एक 10th का बच्चा है और अभी वो पायलट बनने की सोच रहा है, तो उसके लिए क्या 11th 12th में क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? मतलब अगर क्लास 10th से ही माइंड मेकअप करना है कि हमें एक पायलट बनना है तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप?
ओके, सो 10th में अगर कोई बच्चा है उसको पायलट बनना है तो सबसे
जी.
पहले तो मैं बोलूँगी कि वो अपना एक बार ही मेडिकल करवा ले, दैट इज़ क्लास 2 मेडिकल, जिसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी DGCA की वेबसाइट पर, DGCA.NIC.IN, उस पर पूरा लिस्ट अवेलेबल होगा क्लास 2 मेडिकल डॉक्टर्स का। वहाँ जाके
ओके.
अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवा ले, क्योंकि क्या होता है लाइक कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जो आपको नहीं पता लग सकती अगर आप जब तक चेकअप
नहीं
नहीं
पता लगती
करवाओगे।
है.
तो अगर आप सपोज अनफॉर्चुनेटली कलर ब्लाइंड हैं तो आप नहीं बन सकते हैं पायलट। तो ऐसी
पायलट.
एक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी अगर सपोज बैकबोन टिल्टेड है थोड़ी सी, अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको नहीं पता लगेगी, इतनी प्रॉब्लम फेस करेंगे नहीं क्योंकि आप रियल लाइफ में इनकी वजह से, बट आप पायलट नहीं बन पाएंगे उसकी वजह से। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप अपना मेडिकल करवाएं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ठीक है ये चीज़ तो हमारी पास है, अब हम आगे बढ़ा जा सकते हैं। दूसरा, 11th के अंदर फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होता है टू बिकम अ
ओके
पायलट, एंड फिजिक्स और मैथ्स में मिनिमम स्कोर आपको 50% करना होता है।
50%।
हाँ जी, 50%। अब सपोज कोई है जिसने कॉमर्स की है एंड उसको पायलट बनना है, तो अभी कैसे बनेगा वो पायलट? तो उसके लिए आपको
हाँ
क्या करना रहेगा, सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स का एग्जाम आप दीजिए किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से आफ्टर 12th। तो ये
ओके
भी एक ऑप्शन है, मतलब अगर किसी को करनी ही नहीं है लाइक नॉन मेडिकल लाइन लेनी ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही कॉमर्स में है, तो ये दो रास्ते हैं करने
मतलब
के लिए।
हाँ कि ऑप्शंस हैं, अगर आप बायो से या फिर कॉमर्स से हैं तो आप
हाँ
एक
जी
फिज़िक्स और मैथ्स का एग्ज़ाम दीजिए ओपन यूनिवर्सिटी से और फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे।
हाँ जी, क्योंकि वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है लाइसेंस गेन करने के लिए। एंड इलेवेंथ ट्वेल्थ के बाद आप एविएशन ग्राउंड क्लासेस लीजिए पहले, उसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं एविएशन से रिलेटेड, दैट इज एयर नेविगेशन, एयर मेट्रोलॉजी, देन टेक्निकल जर्नल एंड टेक्निकल स्पेसिफिक एंड एयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इन 5 सब्जेक्ट्स की आपको कोई भी ग्राउंड क्लासेस देखा वाला, इट्स अ प्राइवेट ट्यूशन की तरह रहता है ये, किसी भी एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th। उससे क्या होगा, आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है उन सब्जेक्ट्स में तभी आप आगे मतलब फ्लाइंग के लिए जाएं, क्योंकि फ्लाइंग
जाए
एक बहुत ही एक्सपेंसिव फील्ड है, एंड अगर आपको
ओके
मज़ा ही नहीं आ रहा सब्जेक्ट्स में, आपको बहुत स्ट्रगल हो रहा है समझने में, तो मेरा एडवाइस रहेगा कि फिर आप मतलब एक बारी दोबारा सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बेट। एंड आज की डेट में आई थिंक इसका बजट 50-60 लाख रुपए है लाइसेंस गेन करने का, जो कि मेरे टाइम पे 18 लाख रुपए था, तो जंप मार के भी इतना पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं और आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा सब्जेक्ट्स में, या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है समझने में, तो फिर आई डोंट थिंक मतलब यू शुड ऑप्ट फॉर दिस फील्ड, इट इज़ वेरी रिस्की।
डेफिनेटली
तो यही मेरा 10th क्लास के बच्चे के लिए एक एडवाइस रहेगी, इस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है।
सो मैम, 12th पास होने के बाद कि उसके बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि अब हमें पायलट बनना है, तो उसके लिए जैसे कि आपने बताया कि उसे क्लासेस लेनी चाहिए और फिर अपने आप को एनालाइज़ करना चाहिए कि क्या वो उस लेवल पे है या नहीं। तो मैम, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो अपना ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, तो क्या कोई एज क्राइटेरिया भी है कि आप इतने एज तक ही पायलट बन सकते हैं?
एयरलाइंस के अंदर जो आपका एडमिशन होता है लाइक वैकेंसीज जब निकलती हैं, सो मैक्सिमम एज इज 35। तो अगर आप वो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो भी पायलट बनना चाहेगा वो एयरलाइंस के लिए ही बनना चाहेगा,
डेफिनेटली
राइट? तो आप कोशिश करें कि आपका लाइसेंस वगैरह 30 साल तक आ जाए, मतलब 5 साल आपके पास जॉब हंटिंग के लिए रहेंगे मैक्सिमम, तो अच्छा रहेगा, मतलब आप थोड़ी सेफर साइड पे रह सकते हैं।
तो
तो
मैम, जैसे कि
मैक्सिमम एज आई थिंक अभी जो होगी आपने दिमाग में 30 रखी है, उस हिसाब से प्लान करेंगे तो हो जाएगा। एंड मेरे को लगता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन फ्लाइंग के लिए जाना ज़्यादा सेंसिबल रहता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम रहेगा आपका एज एन जो पायलट जॉब है। सपोज आपको अभी जब तक आप मेडिकली फिट है, जब तक तो आपको फ्लाइंग मिलेगा, आपका लाइसेंस भी वैलिड रहेगा। अब खुदा ना खास्ता आपको मेडिकली कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हेल्थ अगर आपकी गई, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी कभी भी, राइट? तो फिर क्या है आपके पास सेकेंड ऑप्शन? यू शुड
हाँ,
ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, मतलब
बैकअप
ऐसा,
प्लान।
क्योंकि पायलट की पढ़ाई ऐसी है कि आप वो अगर लाइसेंस कोर्स करेंगे तो आप पायलट ही बन सकते हैं, आपको और कोई कंपनी नहीं लेगी, मतलब उसको क्या मिलेगा ना इसके अगेंस्ट कि पायलट है तो वो हमारे लिए क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हमेशा ग्रेजुएशन किसी और मेजर में करें, नॉट इन एविएशन, ताकि आपका एक सेकेंडरी प्लान भी बनता रहे साथ में,
बनता रहे.
कि कभी भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, आपके पास कुछ और है टू लुक अप टू, राइट? ऐसा लाइफ एकदम फिनिश नहीं होगी। तो ये एक मेरा एडवाइस है और माय
कि
पर्सनल
हमें
एक्सपीरियंस। हाँ जी,
कि ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए फ्लाइंग स्कूल,
ज़्यादा सेंसेबल है।
ज़्यादा सेंसिबल है.
हाँ जी, या फिर अगर आपने 12th की बात कर दिया है और मीन वाइल सपोज जॉब नहीं लग रहा है आपका, जैसे मेरे वाले केस में हुआ था, एंड एविएशन में रिसेशन वगैरह काफ़ी आता रहता है, लाइक आफ्टर एवरी 3 to 4 ईयर्स आता है। लाइक अभी पेंडेमिक हो गया है तो अभी भी काफ़ी रिसेशन हो गया है, क्योंकि जो
हाँ
वर्किंग
हाँ
पायलट्स ही थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सबको कंपनीज ने निकाल दिया है। अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो काफ़ी सारे
मैम
पायलट्स की
डेफिनेटली
जॉब गई है अभी।
जॉब गई है.
तो अब जब दोबारा से एविएशन बूम आएगा, या जब एकदम वैक्सीनेशन आ जाएगी एंड ट्रैवलिंग नॉर्मल हो जाएगी, तो कंपनीज दोबारा से पायलट्स को लेगी, एंड वो एक्सपीरियंस पायलट्स को ही लेगी जो लोग अभी घर पे बैठे हैं। तो जो नए वाले पायलट्स हैं जिन्हें अभी भी लाइसेंस मिला है, तो फिर से उन लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी रहेगी
वेट
नहीं।
करना पड़ेगा.
हाँ जी, तो या तो वो वाला टाइम वो यूटिलाइज कर लें ग्रेजुएशन करने में, अगर वो 12th के बाद क्लाइंग करने गए हैं। तो दिस इज व्हाट
तो
माय
मैम जैसे
एडवाइस
कि
इज।
जी, तो मैम जैसे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी फ्लाइंग स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट और या फिर प्राइवेट?
यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं, बट जो सबसे बेस्ट हैं, एक तो हमारा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी रायबरेली में, जो कि सबसे पुराना फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, एंड वहाँ का फ्लाइंग स्टैंडर्ड्स सबसे बेस्ट है, एंड वहाँ पढ़ाई भी कराई जाती है, बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, एंड वो जॉब गारंटी नहीं देते हैं। गारंटी नहीं देते हैं, बट एयर इंडिया में अगर कभी जॉब निकलेगा फ्यूचर में, तो वो इग्रुवा के जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको वो देते हैं, प्रायोरिटी मिलती है उन
प्रेफर
लोगों को,
करेंगे उनको.
प्रेफरेंस मिलती
हाँ
है।
हाँ
हाँ जी,
हाँ
तो वो एक है इंस्टीट्यूट जहाँ के बारे में लोग सोच सकते हैं, एंड उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो वो हर किसी को लेते भी नहीं है। देन
ओके
सेकेंड है नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि है CAE का, कनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स, गोंडिया में। गोंडिया है अपना महाराष्ट्र में।
ओके
उसका ये फ़ायदा है, वो है इंडिगो कैडेट प्रोग्राम, उसमें लेटर ऑफ इंटेंट पहले दे देती है कंपनी इंडिगो, एंड उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कराती है, बट वो थोड़ा सा
अच्छा.
एक्सपेंसिव है एग्रुवा से, बट वहाँ सिर्फ एक ये फ़ायदा है कि जॉब गारंटी आपको मिल जाती है फ्लाइंग स्टार्ट करने से पहले, तो अपने आप वेटेज मतलब कर सकते हैं इन दोनों में, कि आपको जॉब गारंटी चाहिए पहले या आपको बेस्ट फ्लाइंग स्टैंडर्ड्स चाहिए। बेस्ट फ्लाइंग
वो एक
स्टैंडर्ड्स चाहिए
पर्सनल
तो
प्रेफरेंस
एग्रुवा
हो
ही है
जाती
वो
है.
तो। हाँ जी, तो
तो मैम जैसे कि जी
हाँ, तो इन दोनों में वही है, यही कंपैरिजन है, बिकॉज रिसेशन इतना आता है एविएशन में, तो सेफर साइड, मतलब अगर मैं होती, मैं सोचना, मेरे को सोचना पड़ता, तो शायद मैं नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाती, क्योंकि एटलीस्ट जॉब गारंटी
क्योंकि
तो
वहाँ
होगी।
पे हाँ जॉब सिक्योरिटी है. तो मैम जैसे कि हमारे फ्लाइट में हम सब जानते हैं कि पायलट्स के साथ साथ कुछ और लोग भी होते हैं जिन्हें हम कैबिन क्रू कहते हैं. तो मैम हमें उनकी भी लाइफ देखने में बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड लगती है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लगती है, एक कैबिन क्रू की लाइफ और एक पायलट की लाइफ. तो अगर एक कैबिन क्रू कोई बनना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं?
कैबिन क्रू के लिए आप 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, एंड कैबिन क्रू के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस कूट कूट के भरा होना चाहिए, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो,
जी
एंड प्लेन में उसको हैंडल करना, पैसेंजर्स को हैंडल करना, इट्स अ बिग टास्क। देन
वेरी बिग टास्क मैम.
हाँ जी, देन आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, मतलब आप कुछ ना कुछ मेडिटेशन वगैरह आपको करना ही पड़ेगा टू स्टे काम, कि आप सपोज आपके घर में कुछ हुआ है या कुछ भी है, क्योंकि इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, तो आपको हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल ही रखनी है, अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आपकी इस टाइप की पर्सनैलिटी है, तो आई डोंट थिंक आपको बनना चाहिए फिर कैबिन क्रू। तो बहुत शांत पर्सनैलिटी होनी चाहिए। देन
क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट पैसेंजर्स मिलेंगे, कोई गुस्से वाला होगा, कोई शांत होगा, तो आपको सबके साथ एक बराबर डील करनी
हाँ
है।
जी हाँ जी। देन दूसरा, आपको एक करेज होनी चाहिए आपके अंदर कि भाई अगर कुछ हो जाए इन एयरक्राफ्ट, कोई सपोज इमरजेंसी आ जाए, तो अगर आप ही घबरा जाओगे तो आप पैसेंजर्स को कैसे संभालोगे। सो आपको अंदर से बहुत मजबूत भी होना पड़ेगा, एंड इमरजेंसी के अंदर आपको कैसे फटाफट एक्ट करना है, फुर्ती होनी चाहिए, मतलब एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ये जबकि ट्रेनिंग दी जाती है ऑफकोर्स, बट ये सब चीज़ें अगर क्वालिटीज आपके अंदर हैं, या आप चाहते हैं कि आपको आपके अंदर आ सकती हैं, ये अगर आप कल्टीवेट करोगे कुछ टाइम तक, तो आप बन सकते हैं कैबिन क्रू।
तो इसका मैम 12th के बाद हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है मैम, मतलब जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इसका?
इसमें आप पहले किसी एकेडमी से वो करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे पूरी, देन कैबिन क्रू के भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, DGCA लेती है, एंड फिर कंपनी जो होती है एयरलाइंस जो इंटरव्यूज़ वगैरह करती हैं, उसके अंदर आपका तो बेसिक इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, देन योर मेडिकल्स विल बी डन, एंड अगर उनको दोनों राउंड्स क्लियर हो गए आपके, तो फिर कंपनी ही अपनी ट्रेनिंग देती है, दैट इज़ लाइक एयरलाइन स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो वो आपको ग्रूमिंग किट देंगे, बताएंगे आपको किस तरीके का मेकअप करना है, हेयर स्टाइलिंग करनी है, एंड यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेगी कंपनी, देन अपने इमरजेंसी प्रोसीजर्स सिखाएगी, जो भी आपका जिस टाइप का एयरक्राफ्ट है कंपनी के पास उसके बारे में आपको पूरा मैनुअल्स वगैरह होते हैं हर एक एयरक्राफ्ट के। मतलब कैबिन क्रू को भी पढ़ाई अच्छी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े मतलब हो जाएगा। एंड एयरलाइंस ही उन लोगों का कोर्स उन्हें पढ़ाया जाता है, मतलब उसके एग्ज़ाम्स लेती है एयरलाइंस, एंड आपको 3 चांसेस मिलते हैं मैक्सिमम, एंड 3 चांसेस में भी अगर आपने क्लियर नहीं करा एग्ज़ाम, तो आपकी जॉब जा भी सकती है। दिस अप्लाइज फॉर बोथ पायलट एंड कैबिन क्रू।
आप क्या बोलते हैं कि जॉब के रहते हुए उसके बीच में आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं?
हाँ, लाइक हमारे एग्ज़ाम हर 6 6 महीने में होते हैं, एंड उसमें आपको तीन चांसेस मिलते हैं, एंड अगर आप नहीं क्लियर कर पाए तो कंपनी आपको टाटा बाय बाय भी बोल सकती है। तो आपको हमेशा मतलब लूप में रहना पड़ता है, एंड अपनी नॉलेज अप टू डेट रखनी पड़ती है।
नॉट लाइक अदर जॉब्स की एक बार एंट्री हो गई तो उसके बाद फिर आराम से करते रहो जॉब, कोई कोई एग्ज़ाम नहीं देना है बीच में।
नहीं, यहाँ पे हर 6 6 महीने बाद तो एग्ज़ाम होते ही है, बाकी ईयरली एग्ज़ाम्स भी होते हैं, काफ़ी तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब एविएशन सिक्योरिटी, देन डेंजरस गुड हैंडलिंग, देन योर क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज़ योर CRM क्लासेस, देन आपका हर साल टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं एयरक्राफ्ट में, तो काफ़ी कुछ सिस्टम्स हैं, राइट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, इन सब के बारे में जानकारी आपको कितनी है, आपको सिस्टम कितना समझ आता है, उसका हर साल एग्ज़ाम होता है। देन हर 6 6 महीने के अंदर जो मैं एग्ज़ाम बोल रही हूँ, दैट इज़ कंपलसरी एग्जामिनेशन, जो कि आपका सिमुलेटर जो होता है, सिमुलेटर आप समझते होंगे, एयरक्राफ्ट
यस मैम,
सिमुलेटर्स,
बिल्कुल।
उसके ऊपर आपको इमरजेंसी सिचुएशंस दी जाती हैं, एंड देखा जाता है कि आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, आप प्रोसीजर
कैसे
फॉलो
एक्ट
कर
कर रहे
रहे
हैं?
हैं कि नहीं, आपको एग्जैक्टली पता है कब क्या करना है, क्योंकि इमरजेंसी रोज तो होंगी नहीं आपके साथ डेली लाइफ में, फ्लाइट पे, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसके लिए सिमुलेटर के ऊपर हर 6 महीने में इसलिए कराया जाता है कि आपके दिमाग में हैमर हो जाए वो सारे, कि आप अगर नींद में भी हैं और कुछ ऐसा हो जाए, तो आपको एग्जैक्टली पता हो मेरा हाथ कब कहाँ कौन से स्विच पे जाएगा, एंड मुझे क्या करना है। तो इसलिए एवरी 6 मंथ्स ट्रेनिंग इज़ कंपल्सरी, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पायलट।
क्योंकि जब हम मैम अगर हम फोटोज़ वगैरह में देखते हैं, कॉकपिट की फ़ोटोज़ देखते हैं, इतने सारे मशीनरीज, इतने सारे बटन्स, तो हमारे माइंड में एक लगता है कि कैसे हमारे पायलट्स इसको मैनेज करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मैम हम मुझे लगता है पायलट्स के जॉब में स्टेट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती
हाँ
है।
जी
तो मैम अब आगे बढ़ेंगे। हमारे कुछ लिसनर्स ने हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, बट हमने कुछ क्वेश्चंस को पिकअप किया है तो वो आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे।
हाँ जी
तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंडिया के अंदर सबसे चीपेस्ट तरीका कौन सा है पायलट बनने का, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए।
जनरल कैटेगरी के लिए तो आप कोई सा भी फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कीजिए, मतलब इग्रुआ थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा क्योंकि वो कैडेट प्रोग्राम है। आप एविएशन, अहमदाबाद एविएशन एकेडमी देख सकते हैं, एंड और भी काफ़ी सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं इंडिया में प्राइवेट, जहाँ पे आप फ्लाइंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर फाइंडिंग फॉर द चीपेस्ट वे। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ फ्लाइंग ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो अगर दोनों चीज़ आपको मिल जाए कहीं तो फिर बहुत अच्छा हो
अगर
जाएगा।
आपको एक रिकमेंडेशन देना हो मैम, तो आप कौन सा देंगी फ्लाइंग स्कूल?
अहमदाबाद एविएशन एकेडमी, उसके बारे में
अहमदाबाद
मेरे
एविएशन
पास
एकेडमी।
अच्छे रिव्यूज़ हैं एंड वहाँ का फ्लाइंग ट्रेनिंग इज़ वेरी गुड।
ओके।
हाँ जी
सो नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा गया है, हमारे लिसनर ने पूछा है कि क्या कोई स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को फ्लाइट ट्रेनिंग के दौरान मेरिट के स्कोर, मेरिट के बेसिस पे?
स्कॉलरशिप सिर्फ एससी और एसटी को मिलती है इंडिया में, जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती है यहाँ पे गवर्नमेंट, तो अनफॉर्चुनेटली कोई मार्क्स वगैरह मेरिट वेरिट पे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है।
ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट।
करेक्ट।
आई नो दैट्स अ सैड पार्ट, बट फिर भी हो सकता है आगे चल के चेंज हो, बट फिलहाल तो यही है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है।
हाँ जी
मैम एक अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल बेस्ट है, इंडिया में या फिर एब्रॉड में?
अगर आप इंडिया से फ्लाइंग करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया निफ्टी और इग्रुआ बेस्ट हैं, और इंडिया से फ्लाइंग करने का सबसे मेजर फायदा ये होता है कि आप साथ साथ एग्जाम्स भी दे सकते हैं डीजीसीए के लाइसेंस के, तो एक ही बार में आपका काम हो जाता है कि फ्लाइंग भी आप कर रहे हैं यहीं पे, एग्ज़ाम जब होंगे तब आप आ सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। पर जब आप बाहर से फ्लाइंग करते हैं, बाहर से मैं कहूँगी सबसे अच्छी फ्लाइंग होती है न्यूजीलैंड में, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन कनाडा, दीज थ्री। ये तीनों भी अच्छे क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाता है अनलाइक यूएसए, एंड यहाँ के फ्लाइंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। बट वहाँ का सिर्फ एक छोटा सा नुकसान यही होता है कि आपको पहले वहाँ का लाइसेंस मिलेगा, आपको वहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, एंड फिर इंडिया में भी आके आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे इंडियन लाइसेंस के लिए, तो बेसिकली आपको दो बार एग्ज़ाम देने पड़ जाते हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाता है वो प्रोसीजर। बट वहाँ का फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स दे आर वेरी नाइस, तो अगर आपके पास पैसा है टाइम है तो आप, और आप बाहर जाने के लिए आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउ कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड गो टू न्यूजीलैंड फॉर फ्लाइंग।
न्यूजीलैंड।
हाँ जी
एक क्वेश्चन मैम, क्या पायलट्स को वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है जब वो इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं बार बार?
नहीं, हम लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं जनरल डिक्लरेशन, दैट इज़ द डॉक्यूमेंट, उस पर हम लोगों को बस साइन करना होता है, हमारा पासपोर्ट नंबर लिखा होता है, एंड वो कस्टम इमिग्रेशन वाले साइन कर देते हैं जहाँ पे जो भी आपके वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होते हैं एयरपोर्ट पे, एंड दैट इज़ द पेपर जो हमें अपने साथ रखना होता है जब हम दूसरी कंट्री पहुँचते हैं, एंड पासपोर्ट एंड जनरल डिक्लेरेशन, दैट इज़ इट।
एक अगला क्वेश्चन ये है मैम आपसे कि इस जॉब पायलट जॉब के अंदर फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट होती है?
फिटनेस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एंड नॉट जस्ट फिजिकल बट मेंटल फिटनेस ऑल्सो,
ऑल्सो।
क्योंकि हम लोगों का जॉब ऐसा है कि मतलब आप इंजॉय करते हैं फ्लाइंग, पहली बात तो ये जॉब ऐसा है कि जॉब लगता नहीं है, अगर कोई एक्चुअल में किसी का पैशन है फ्लाइंग का तो उसको कभी ये जॉब लगेगा ही नहीं, उसको लगेगा ये तो मेरा हॉबी ही चल रही है, यू नो लाइक द थिंग विच आई लव आई एम डूइंग इट आई एम लिविंग इट। बट क्योंकि आपका दिन रात का कोई हिसाब किताब रहता नहीं है, खाने पीने का कुछ टाइम नहीं रहता है, क्योंकि कभी भी फ्लाइट्स लगती हैं, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि आपको अपना फैमिली भी देखना है, एंड आपको फ्लाइंग से भी बहुत प्यार है, आप फ्लाइंग भी करना चाहते हो, बट आपका टाइम टेबल भी बिगड़ रहा है, तो थोड़ा तो टोल आता है बॉडी पे जब आप फ्लाइंग करते हैं। तो आपको मेडिटेशन इज मस्ट, आई वुड से, अगर आप नहीं करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो आप ऐड कीजिए। एंड कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, योगा, कुछ भी आप मतलब कर सकते हैं घर पे, बस थोड़ा बहुत लाइक आधा घंटे के लिए, दैट इज मस्ट, क्योंकि आपका एवरी ईयर मेडिकल होता है एंड उसमें अगर कोई भी पैरामीटर ऊपर नीचे होगा तो आपको घर बिठा दिया जाएगा और आपका लाइसेंस भी वैलिड नहीं रहेगा उतने टाइम तक के लिए जब तक आप मेडिकली अनफिट हैं। तो हेल्थ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पायलट के लिए।
तो लिसनर्स, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम ले रहे हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद आगे भी दो तीन क्वेश्चंस हैं जो मैम से पूछेंगे, और आपके क्वेश्चंस ही भेजे हुए क्वेश्चंस हैं, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तोहफे तो सिर्फ तोहफे होते हैं, लेकिन उनके पीछे की जो भावना होती है वो बहुत स्पेशल होती है। क्या आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी को बर्थडे पे या वेडिंग पे क्या गिफ्ट दें? वेल, इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कस्टोविश, कस्टोविश के इंस्टाग्राम स्टोर पर आपको मिलेंगे ढेरों गिफ्टिंग के ऑप्शंस, जैसे कस्टमाइजेबल वॉलेट्स, क्लॉक्स, स्पीकर्स, गिफ्ट, फोटो फ्रेम्स, टी शर्ट्स, कॉफी मग, फोन कवर्स, बॉटल्स, डिजिटल कार्ड्स और भी बहुत कुछ। तो अभी कस्टोविश के इंस्टाग्राम पेज पर जाएं और अपना मनपसंद प्रोडक्ट ऑर्डर करें। कस्टोविश का इंस्टाग्राम हैंडल है कस्टोविश, CUSTOWISH, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9693749696 पर डीएम करें। आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं यदि आप कोड यूज करते हैं FMDT10। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें कस्टोविश के साथ। कस्टोविश, ऑल योर इमेजिनेशंस अंडर वन रूफ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम इस वक्त कर रहे हैं मैम से Q&A सेशन, और आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस को हम पूछ रहे हैं मैम से। तो इसी के लाइन में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन मैम आपसे पूछा है आराधना जी ने। वो क्वेश्चन ये है कि वो आपसे जानना चाहती हैं कि जैसे कि आप जब फ्लाइट्स में रहती हैं तो आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स या पैनिक्स आप फेस करती हैं उसके बेसिस पे आप रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए क्या सजेशन देना चाहती हैं।
तो आप बोल रहे हैं कि मैं फ्लाइट के अंदर कोई भी इमरजेंसी आती है, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया गया है, उससे मैं अपनी रियल लाइफ में कैसे प्रेरणा लेती हूँ,
हाँ,
बेसिकली
यस मैम,
दिस इज द क्वेश्चन, राइट?
यस यस मैम,
तो हमारी कोई भी फ्लाइट में इमरजेंसी होती है तो पहली लाइन लिखी होती है कीप काम।
कीप काम, बेस्ट लाइंस।
सबसे हाँ, जिससे आप नॉर्मल लाइफ में भी अगर कुछ भी हो जाए आपके साथ, पहली चीज़ आप कीजिए जस्ट कीप काम, क्योंकि ये समय है, टल ही जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम है टल
बिल्कुल।
जाएगी। बट अगर आप अपना आपका पीस ऑफ माइंड ही नहीं है उस टाइम, या आप काम ही नहीं है, आप एकदम हड़बड़ा रहे हैं या पैनिक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपका दिमाग सोच ही नहीं पाएगा आगे करना क्या है। तो सबसे पहले जस्ट कंट्रोल दैट थिंग कि ठीक है, प्रॉब्लम है, इन हैंड है, अब हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है, उसका तरीका है, आपकी किताबों में मिलेगा आपको, आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें, उसके अंदर मिलेगा। रियल लाइफ में आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं किसी को, दोस्त को कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ उससे बात कर सकते हैं, या कोई किताब पढ़ सकते हैं, मतलब तरीके होते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने फ्लाइंग से यही सीखी है, पेशेंस की क्या वैल्यू है लाइफ में, ये अगर पेशेंस नहीं है तो आप फिर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं लाइफ में।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ में टू कीप काम। कैसी भी सिचुएशन हो, आपको हमेशा एक शांत दिमाग से अपनी प्रॉब्लम को समझना है, और यदि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है।
हाँ जी,
आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, आराधना जी ने क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है कि आपने दो एयरलाइंस के साथ काम किया, इंडिगो के साथ और एयर इंडिया के साथ, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ द्वारा हैंडल की जाती हैं। इंडिगो की जाती है प्राइवेट बॉडी द्वारा, और एयर इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है। तो दोनों के बीच में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा?
प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिगो में और एयर इंडिया में, इंडिगो में मैंने देखा पायलट्स बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक हैं, एज इन उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लाइंग करवाती है कंपनी, इतनी फ्लाइंग एयर इंडिया में नहीं करता है पायलट। सेकेंडली वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो है पायलट की, कुछ भी इमरजेंसी होगी या कोई सी भी सिचुएशन है, उसको पायलट को पहले अपनी कंपनी को पूछना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। एंड वो अगर एयरक्राफ्ट में भी है, इन एयर भी है, तब भी कंपनी उनको बताएगी कि आपको यही मतलब आप इस वाले फ्लाइट एयरफील्ड में डाइवर्ट हो जाइए, सब कुछ नीचे से कंट्रोल होगा। बट एयर इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर आप एयरक्राफ्ट में हैं, इन एयर हैं, तो आप ही डिसाइड करेंगे, यू आर दी डिसाइडिंग एंटिटी, एंड आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने ये देखा एयर इंडिया में कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो हैं वो डेवलप होंगी एज अ पायलट, जो कि आई डोंट थिंक कि इंडिगो में हो सकती है।
जो
यहाँ
कि
पे
बहुत ज्यादा
एक्सपीरियंस्ड
जरूरी है।
पायलट्स हैं। हाँ जी, मतलब अगर आपको इनिशियली कोई कंपनी ज्वाइन करनी है सीखने के लिए और अपना बेस बनाने के लिए, तो एयर इंडिया से अच्छी एयरलाइंस और कोई नहीं होगी मेरी नज़र में। बट यहाँ की मैनेजमेंट, अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट चल रही है कंपनी में, बट हाँ वहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है इंडिगो की, दे आर वेरी प्रोफेशनल, हर चीज़ टाइम पर होगी, सैलरी टाइम पे आएगी। एयर इंडिया में कितनी बार सैलरीज टाइम पे नहीं आती है, एंड आपको पता ही होगा अभी इतना न्यूज़ में भी आता ही रहता है एयर इंडिया के बारे में,
हाँ हाँ
तो
डेफिनेटली
वो
मैम।
सब चीज़ें हैं। एंड फ्रॉम पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मुझसे पूछेंगे, एयर इंडिया में जब भी मैंने अप्लाई किया था, मुझे बहुत ही इंडियन वाली फीलिंग आती है, एज एन साड़ी के अंदर होंगी कैबिन क्रू, नमस्कार करेंगी आपको एक, मतलब अगर कहीं बाहर से भी आते हैं आप, तो आपको एयरक्राफ्ट में बैठते ही लगेगा दैट यू आर एट होम, दैट होमली फीलिंग इज देयर इन एयर इंडिया, विच आई कैन नॉट सेंस इन एनी ऑफ द एयरलाइंस इन इंडिया।
ऐसा कि मैम मैंने देखा कि कुछ YouTube पे और फिर कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट और कुछ वीडियोस एयर इंडिया को लेकर के किए गए हैं कि जहाँ पे कि उनकी थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म में थोड़ी सी लैग देखने को मिला है, क्योंकि कभी कभी फ़्लाइट्स हो सकता है कैंसिल्ड हो गई हैं अचानक से, या फिर बहुत ज़्यादा डिले हो गए हैं, तो लोगों को एयरपोर्ट पर करीब 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे तक वेट करना पड़ा है। तो इसको लेकर के एयर इंडिया ने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया कभी अपने पैसेंजर्स को। तो बहुत बार पैसेंजर्स के रिव्यूज़ वगैरह में एयर इंडिया को लेकर के एक खास तरह का क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है मैम?
यहाँ क्योंकि अभी मैनेजमेंट इश्यूज हैं जो कि कंपनी काफ़ी वर्क कर रही है उसके ऊपर, एंड अब तो नई मैनेजमेंट भी आ रही है। यहाँ क्या था पहले कि ओल्ड एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा थे जिनका रिटायरमेंट ही नहीं हुआ, एंड वो चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे, एंड जैसा कि आपको पता होगा गवर्नमेंट एजेंसीज में कितनी बार हो जाता है सेचुरेशन आ जाता है एंड लोग काम नहीं करते हैं। तो जब इतना ज़्यादा बैड रिव्यूज़ हो गए एयर इंडिया के, तो कंपनी एक्शन ले रही है उसके लिए। अब काफ़ी यंग ऑफिसर्स आ चुके हैं, तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, एंड आपको भी मतलब धीरे धीरे नज़र आने लग जाएंगे।
यस मैम, और मेरी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा एयर इंडिया रहती है, सो मैं तो एयर इंडिया से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। ओके मैम, जैसे कि अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि एयर इंडिया काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही है, तो इस लॉस के चक्कर में क्या पायलट्स के सैलरीज पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है?
हाँ जी, हाँ जी, हम लोगों को कितनी बार 3-3 महीने तक सैलरी नहीं आती है, डिले चलता है। हाँ जी, तो मतलब वी एवरी एम्प्लॉय इज अफेक्टेड, बट हम लोगों का जो सैलरीज आती है वो दो पार्ट में आती है, वन इज योर फ्लाइंग जो मेजर आपका पार्ट होता है फ्लाइंग का, एंड दूसरा आपका होता है बेसिक सैलरी। तो कंपनी बेसिक हम लोगों को देती है, बेसिक कभी उन्होंने रोका नहीं है, बट जो हमारा फ्लाइंग अलाउंस है जो कि मेजर पार्ट ऑफ द सैलरी है, वो डिले हो जाता है कितनी बार।
जो कि डिपेंड करता है कि आप कितने देर हवा में रहें, फ्लाइंग आवर्स पे।
हाँ जी, हाँ जी, वो हर एक पायलट का डिफरेंट होता है, तो उसमें कितनी बार डिले चलता है कंपनी का। बट अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, आई वुड से जब मैंने इनिशियली ज्वाइन करी थी कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा डिले चलता था, बट अब जाके सिचुएशन बेटर हो गई है।
तो अभी एयर इंडिया मैम अपने लॉस से क्या ओवरकम कर पा रही है?
हाँ जी, कंपनी अब
ओके
लॉस अपने ओवरकम कर पा रही है। अभी जो आप पेंडेमिक में जितनी भी फ्लाइट्स करी है एयर इंडिया ने, जो आपका वंदे भारत मिशन था,
यस मैम, वंदे
अरे
भारत मिशन.
हाँ, उससे कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है एंड उसकी इमेज भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है कंपनी की, कि कोई भी आप देखेंगे नेशनल कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है कंट्री में, एयर इंडिया हमेशा आगे रहती है हेल्प करने के लिए।
हमेशा आगे रहती है. यस मैम.
हाँ जी
ओके मैम, सो अगला क्वेश्चन हमको पूछा है हर्षित जायसवाल ने. हर्षित जायसवाल का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. उन्होंने पूछा है कि हर एक जॉब का एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है, तो एक पायलट के ज़िंदगी में कौन सा पॉजिटिव पार्ट और कौन सा नेगेटिव पार्ट होता है?
पॉजिटिव पार्ट तो बहुत सारे हैं मेरे पास बताने के लिए, बिकॉज आई लव फ्लाइंग। तो मैं तो अगर फ्लाइंग नहीं करूँ तो आई विल बी डिप्रेस्ड, बट फ्लाइंग में बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है आपको, नए नए लोगों से आप देखने को मिलता है, कि एवरी डे आपके पास एक नया पायलट होता है फ्लाइंग करने के लिए। हाँ, तो आपको एक पर्सनैलिटीज मिलती हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग लोगों के साथ काम करना है, देन हर दिन एक नया दिन है, कुछ भी हो सकता है फ्लाइट में, हर दिन नया वेदर है, नई डेस्टिनेशन है, किस तरीके का क्रू मिला है आपको, क्या पैसेंजर है, मतलब
एक तरह
ऐसा
से
मोनोटोनस नहीं है।
एडवेंचरस लाइफ होती है.
हाँ जी, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और अनएक्सपेक्टेड रहता है हमेशा, कि अब आगे क्या हो जाए कुछ नहीं पता, अपनी जिंदगी की तरह। देन नेगेटिव आई वुड से होता है कि कितनी बार होता है कि फेस्टिवल्स हैं या घर पे किसी का बर्थडे है, कुछ है और आपकी फ्लाइट लग गई, अब आप मना तो कर नहीं सकते हो, जॉब ऐसी है, तो आप कितनी बार अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ योर पैशन और आई वुड से एम्बिशन, क्योंकि जॉब ही ऐसी है, आप मतलब कंपनी को बार बार तो बोलेंगे नहीं, सेम रीजन की वजह से आपको वो ऑफ दें, मतलब कभी कभार आप ऑफ ले सकते हैं बट हर बार नहीं। तो नेगेटिव सिर्फ इतना ही है एंड बाकी और कुछ भी नेगेटिव नहीं लगता है मेरे को अपनी जॉब में।
मतलब पायलट्स की लाइफ में एक सोशल लाइफ को लेकर के थोड़ी सी नेगेटिविटी है, बाकी सारी की सारी पॉजिटिविटी ही है.
हाँ जी, बाकी सब तो पॉजिटिव ही,
हाँ
बट पायलट कुछ
हाँ
लोग अगर पैसा सोच के बनना चाहते हैं कि भैया पैसा बहुत है इस लाइन में, ये बहुत ही ग्लैमरस फील्ड है, तो आई डोंट थिंक आपको बनना चाहिए, तो आप नहीं यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। अगर जब तक आपके अंदर से पैशन ही नहीं होगा फ्लाइंग के लिए, या आप उसको प्यारी नहीं करोगे उस चीज़ को, अपनी मशीन को जो आप जहाज उड़ाते हैं उसके लिए आपको प्यारी नहीं है नो, मतलब मैं जैसे एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा फ्लाइंग के लिए, या कोई भी पायलट मुझे लगता है एक्साइटेड रहता होगा कि अरे मेरी कल फ्लाइट है, तो अगर वो आपको एक्साइटमेंट नहीं है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे एंड
फिर वो
आप
बर्डन हो जाएगा आपके
आपको
ऊपर.
नेगेटिविटी फिर ज़्यादा उभर के दिखेगी सामने एंड हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे उस चीज़ को।
जो कि मैम हर एक जॉब पर मुझे लगता है एप्लीकेबल होता है, कि अगर आप जब तक आप पैशनेटेड नहीं हो उस जॉब के लिए तो आपको नेगेटिविटी ही ज़्यादा दिखने लगेगी.
हाँ जी हाँ जी
एक और क्वेश्चन था मैम, जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अगर वो पायलट बनना चाहते हैं तो उनका पहले से ही माइंड मेकअप होता है कि हमें कमर्शियल पायलट बनना है, लेकिन वो इस फ्लाइंग स्कूल के प्रोसेस को स्किप करते हुए वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं, वो फिर कमर्शियल पायलट बन जाते हैं. तो मैम इसको आप कितना सही मानती हैं?
मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, अगर आपको देश की ही सेवा करनी है तो आप इंडियन एयरफोर्स में ही रहिए,
रहिए.
एंड अगर आप उसके लिए मेडिकल और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे हाइट का जो रिक्वायरमेंट है फ्लाइंग के अंदर कॉमर्शियल पायलट के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उस इंडियन एयरफोर्स का अगर किसी को पायलट बनना है तो उसकी हाइट रिक्वायरमेंट्स हैं, मेल के लिए भी है फीमेल के लिए भी है। तो अगर आप लकीली मतलब सब कुछ आपका सही है मेडिकली एंड आपको रुचि भी है कि भाई देश की सेवा करनी है मुझे, एंड इतना हाई स्पीड एयरक्राफ्ट उड़ाने को मिलेगा मुझे, इतने एरोबेटिक्स में करूंगा। ये असली फ्लाइंग तो अगर आप देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ही करते हैं। कॉमर्शियल का तो क्या है, फ्लाइंग है बट वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है पैसेंजर्स को लेके, सेम तरीके से ही उड़ेगी फ्लाइट रोज, एक प्रोसीजर सेट है। बट इंडियन एयरफोर्स में ऐसा नहीं है, वहाँ आपको काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें करनी है, एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड बहुत ही फन है, मतलब वहाँ फ्लाइंग में थ्रिल है एक। तो अगर किसी का एडमिशन वहाँ हो जाता है एंड, तो मुझे नहीं लगता उसको कभी छोड़ के आना चाहिए। मतलब एक तरीके से आप देश को धोखा ही दे रहे हो, या अपने पैसे के लिए या जिसकी भी चीज़ के लिए आप लालच में कॉमर्शियल ज्वाइन कर रहे हो, तो आपने भाई किए ही क्यों इन फर्स्ट प्लेस इंडियन एयरफोर्स।
तो मैम, जैसे कि जो इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट्स होते हैं, तो क्या उसके लिए जो पायलट्स को अलग पायलट लाइसेंस चाहिए होता है, और कमर्शियल के लिए अलग, या फिर दोनों में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ ही होती हैं?
नहीं, उन लोगों का सब कुछ अलग ही होता है। एंड कॉमर्शियल के लिए कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है।
तो अगर कोई एक एयरफोर्स पायलट है तो फिर उसे कमर्शियल ज्वाइन करना है, तो उसे फिर दोबारा से एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना पड़ेगा?
हाँ जी,
सो मैम, मेरे लिसनर्स और मैं दोनों ही आपकी बुक व्हील्स अप के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, तो हमें उसके बारे में थोड़ा बताएं।
अगर मेरे लिसनर्स को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए एविएशन से रिलेटेड, तो वो मेरी बुक पढ़ना ना भूलें। उसमें काफ़ी सारे एविएशन मिथ्स मैंने बर्स्ट करे हैं, पायलट की लाइफस्टाइल के बारे में बताया है, देन फीमेल पायलट के बारे में बताया है मेजरली, कि आप, क्योंकि फीमेल्स बहुत कम है आज की डेट में भी, काफ़ी कम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स हैं एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड। तो हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो लोगों को नहीं पता होता। लाइक ग्लोबली आई थिंक सिर्फ 5% फीमेल पायलट्स हैं, बट अगर आप इंडिया में देखेंगे रेशियो तो इट्स 10% ऑफ द पायलट्स आर फीमेल, जो कि डबल है ग्लोबल से। तो मेल डोमिनेटेड फील्ड के अंदर एक फीमेल कैसे सर्वाइव करती है उसके बारे में मैंने बताया है। एंड ये सिर्फ पायलट्स के लिए नहीं है किताब, ये नॉर्मल कोई है बंदा बंदी जो कि रेगुलरली ट्रेवल करते हैं, लाइक फ्रीक्वेंट एयर ट्रेवलर्स हैं, ये उनके लिए भी है। ये कोई स्टूडेंट है जो कि उसको पता नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है आगे, वो ये बुक पढ़ सकते हैं। देन जो एस्पायरिंग पायलट्स हैं वो तो उनके लिए तो है ही है वो, और एक नॉर्मल इंसान जो सोचता है कि हर दिन मेरी लाइफ एक एडवेंचर है, जिसकी ऐसी थिंकिंग है कि हर हर दिन एक एडवेंचर है, वो ये बुक पढ़ सकता है। तो ये बुक सिर्फ पायलट्स के लिए नहीं है एंड इसे कोई भी पढ़ सकता है। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड एंड उसमें मैंने अपने ही एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, बट किसी और के नाम पर, क्योंकि मैंने फिक्शनल नॉवल बनाया है।
एक कैरेक्टर
हाँ
प्लॉटिंग करके।
जी, हाँ जी,
सो ऑल माय लिसनर्स, मैम की बुक की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर उसे चेक करें। आप उस लिंक को फॉलो करके आप सीधे अमेज़ॉन पे जा सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि मैचर की मैम ने भी बताया कि उनकी पेपरबैक वर्जन बहुत जल्द आने वाली है, तो मैम को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। मैम का इंस्टाग्राम हैंडल है @CaptainPriyaJain, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है मैम के इंस्टाग्राम हैंडल की, तो ज़रूर जाके फॉलो करें। सो थैंक यू वेरी मच मैम हमारे शो पे आने के लिए, मिस्टर टॉकी टॉक्स पे। आज आपने जो इतने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन्स हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किए, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हम सब के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतने अपने वैल्यूएबल टाइम को हमारे साथ शेयर किया।
थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड क्वेश्चंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। थैंक
इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिस्टर टॉकी टॉक शो में आज हमने फीचर किया कैप्टन प्रिया जैन को, और आप सुन रहे थे शो मेरे यानी अमन के साथ, ओनली ऑन FM Downtown। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।